भैया सुनिए तो, भैया आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? भैया मम्मी बुला रही है आपको। भैया कहाँ खो गए, होश में लौटिए। अपने ख्यालों में खोया माधव किसी के लगातार हिलाने पर होश में लौटा। नज़रें ठीक सामने खड़ी लड़की पर पड़ी जो उसकी बहन शिखा थी। चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। इतने में शिखा ने परेशानी भरे स्वर में कहा, भैया मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे, ध्यान कहाँ था आपका? शिखा के सवाल सुनकर पल भर को माधव के जहन में बीती पुरानी यादें कौंध गईं। अगले ही पल उसने सर झटकते हुए उन ख्यालों को परे धकेला। कुछ नहीं, बस काम को लेकर कुछ सोच रहा था। तू बता क्या हुआ, क्यों बुला रही थी मुझे? मैं नहीं, मम्मी बुला रही है आपको। आता हूँ हाथ मुंह धोकर 5 मिनट में। माधव का जवाब सुनकर शिखा ने सर हिलाते हुए हामी भरी और जाने को पलट गई। पर कुछ सोचते हुए उसके आगे बढ़ते कदम ठहर गए और वो पलटकर माधव को देखने लगी। भैया, उसकी पुकारने पर माधव ने भी सर घुमाकर उसे देखा। हाँ, इतनी चिंता मत लिया कीजिए आप, और काम की फ़िक्र वहीं छोड़कर आया कीजिए। इतना स्ट्रेस लेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और आप जानते हैं कि आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं, आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। चेहरे पर गंभीर भाव लिए वो ये सब बोल रही थी और उसके अल्फाजों में माधव के लिए प्यार और चिंता झलकने लगी थी, जिसे महसूस करते हुए माधव हौले से मुस्कुरा दिया और उठकर उसके पास चला आया। जानता हूँ, और जो करता हूँ तुम सबके लिए ही करता हूँ, मेरा भी तो इस दुनिया में तुम्हारे और माँ के अलावा आप कोई नहीं। माधव ने उसके सर पर हाथ फेरा तो शिखा भावुक होकर उसके सीने से लग गई। माधव ने भी अपनी छोटी बहन को अपने गले से लगा लिया। भैया आपको पता है ना, मैं छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी और समझदार हो गई हूँ। कुछ देर बाद शिखा ने उससे दूर होते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर माधव ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए हामी भर दी। बिल्कुल, तुम तो अब इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे तुम्हारी शादी की चिंता सताने लगी है, पर सोचता हूँ अगर मेरी ये समझदार बहन भी हमें छोड़कर इस घर से विदा होकर चली गई तो इस घर का और मेरा क्या होगा, माँ का ख्याल कौन रखेगा? भाई था वो उसका। उसकी बढ़ती उम्र के साथ अब एक तरफ जहाँ उसे उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी सबसे छोटी और लाडली बहन को खुद से दूर करने का सोचकर मन बोझिल हो गया था। माधव की बात सुनते ही शिखा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने नाराज़गी से अपने गालों को फुलाया और नाक सिकोड़ते हुए शिकायती लहजे में बोली, ऐसा सोचिएगा भी मत आप, मैं कोई शादीवादी नहीं करूंगी, मैं आपको और मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आप दोनों के साथ हमेशा, और खबरदार जो आपने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए कोई रिश्ता तलाशा, पहले ही आप पर जिम्मेदारियां कम है जो मेरी शादी करवाकर आप अपनी मुश्किलें और बढ़ाना चाहते हैं। वैसे भी अभी मुझे बहुत पढ़ना है, मेरा शादीवादी का कोई इरादा नहीं, इसलिए मेरी नहीं अपनी चिंता कीजिए। शिखा ने नाराज़गी से भड़कते हुए उसे अपना फ़ैसला सुना दिया, फिर पल भर ठहरते हुए आगे बोली, मैं आपसे बस ये कह रही थी कि अब मैं छोटी और नादान नहीं रही, बड़ी और समझदार हो गई हूँ, तो आपको कोई भी परेशानी खुद तक रखकर अकेले परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, शायद मैं कहीं आपके किसी काम आ जाऊँ, अब मैं जा रही हूँ, आप आ जाइएगा बाहर। तुनकते हुए शिखा वहाँ से चली गई और पीछे खड़ा माधव बस उसे देखता ही रह गया। उसके जाने के बाद उसकी कही बातें याद करते हुए माधव मन ही मन खुद से कहने लगा, चिंता तो मुझे है तुम्हारी, बहुत चिंता है, और वो तभी खत्म होगी जब तुम्हारा हाथ एक अच्छे और समझदार जीवनसाथी के हाथों में सौंपकर अपनी इस आखिरी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाऊंगा। मेरी तीनों बहनें अपने अपने ससुराल में सुख से रहेंगी तो मुझे भी सुकून रहेगा कि मैंने अपनी हर जिम्मेदारी को ठीक से पूरा कर दिया। माधव किन्हीं गहरी सोच में खो गया। इतना आसान नहीं होता घर का मुखिया बनकर पूरे घर परिवार को संभालना। 100 चिंता और 100 परेशानियां होती हैं। जिसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी हो उसकी स्थिति शायद ही कोई दूसरा समझ सके। माधव ने सर झटका और कपड़े लेकर कमरे के बाहर बने बाथरूम में चला गया। उस 2 कमरों के घर में बाथरूम एक ही था। दूसरी तरफ रात का खाना बनाने के बाद राधिका अपने कमरे में चली आई। जहन में अब भी माधव से हुई मुलाकात और उसकी बातें घूम रही थी। थके कदमों से वो उस कमरे में लगी अलमारी के पास चली आई। अपनी अलमारी के सबसे नीचे के खाने में चादरों के नीचे दबी एक पुरानी सी एल्बम निकाली और पलंग पर आकर बैठ गई। राधिका कुछ पल सुनी निगाहों से भावहीन सी उस एल्बम के कवर पर छपी तस्वीर को घूरती रही, जिसमें शादी के सुर्ख जोड़े में सजी दुल्हन बनी बैठी राधिका और उसका हाथ थामे एक लड़का उसके साथ ही बैठा था। गोल्डन शेरवानी में दूल्हा बना वो लड़का देखने में जितना हैंडसम लग रहा था, चेहरे से उतना ही खड़ूस और घमंडी भी लग रहा था। उस तस्वीर के नीचे बड़ी ही खूबसूरती से लिखा था, राधिका वेड्स अजय, शादी। राधिका ने कंप कपाते लबों से ये शब्द कहा और दिल में तेज दर्द सा उठा, एक टीस सी चुभी मन में, चेहरे पर अजीब सा दर्द झलकने लगा और आंखों से गर्म लावा बरसने लगे। अगले ही पल राधिका ने बड़ी ही बेरहमी से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। दर्द भरी आह उसके लबों से निकली और सीने में उठते दर्द को संभालते हुए उसने थरथराती कमजोर पड़ती उंगलियों की सहायता से उस एल्बम को खोल दिया। फ्रंट पेज पर उसकी शादी की बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें वो अपने दूल्हे संग खड़ी नजर आ रही थी। शादी,
हाँ, शादी हुई थी मेरी, जो मेरी बर्बादी की वजह बन गई। उस तस्वीर को घूरते हुए राधिका ने मन ही मन कहा और भावहीन सी उस एल्बम को देखने लगी जो उसकी शादी की एल्बम थी। दीदी, क्या कर रही हैं आप तब से यहाँ रूम में बंद होकर? पापा और मैं कब से खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं? अचानक आई अर्पिता की आवाज सुनकर राधिका ने हड़बड़ाते हुए एल्बम बंद कर दिया, पर इससे पहले कि वो उसे छुपा पाती, अर्पिता की नजर उस पर पड़ गई और इसके साथ ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, आप फिर इसे खोलकर बैठ गईं। कितनी बार मैंने आपको कहा है कि भुला दीजिए उस रिश्ते को, उस शख्स से जुड़ी यादों को अपने जहन से निकाल फेंकिए और मिटा दीजिए उन निशानियों को जो उस रिश्ते और आपके दर्द से जुड़ी हैं। पर आप कभी मेरी सुनती नहीं है, हमेशा इसे खोलकर बैठ जाती हैं। अर्पिता राधिका पर काफी नाराज लग रही थी और उसके लहजे में गुस्से से ज्यादा निराशा, राधिका की परवाह और अजीब सा दुख छलक रहा था। अर्पिता की बात सुनकर राधिका के चेहरे के भाव कुछ बदल गए।